मित्र, क्या आपके जीवन में निराशा है? घबराएं नहीं, क्योंकि कार्यक्रम आशा की किरण में आपके लिए एक नई आशा है, जिससे आप अवश्य अपनी निराशा दूर कर सकते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए इस गीत से कार्यक्रम का आरंभ करें।
नमस्कार प्रिय मित्र, पिछले कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय था प्रभु यीशु की प्रथम सेवकाई और उनकी घोषणा कि वे जगत में क्यों और किसकी ओर से आए। आपको मालूम होगा कि प्रभु यीशु जब उपदेश देते थे तो दृष्टांतों का बहुत सुंदर प्रयोग किया करते थे। आज मैं ऐसे ही एक मशहूर और लोकप्रिय दृष्टांत पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगी, जिसको हम कह सकते हैं खोया और पाया, क्योंकि इस दृष्टांत में एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख है जिसने अपने कर्मों से स्वयं को खो दिया था, लेकिन बाद में अपने और अपनों दोनों को पा लिया। बाइबल में यह उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के रूप में विख्यात है। जी हाँ प्रिय मित्र, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत बाइबल में इसका उल्लेख लूका अध्याय 15 पद 11 से 24 में मिलता है। आप यह अंश पढ़कर इस पर मनन कर सकते हैं। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जिसके दो बेटे थे। एक दिन छोटे बेटे ने पिता से जिद करके अपनी संपत्ति का बंटवारा करवाया और सारा धन दौलत लेकर किसी दूर देश को चला गया। वहां उसने सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया। इसी समय उस देश में अकाल पड़ा और वह संकट में पड़ गया। जब वह संकट में पड़ गया तो उसने वहाँ एक व्यक्ति के यहाँ नौकरी कर ली। उस व्यक्ति ने इसको सुअर चराने का काम दिया। उसका काम यह था कि वह सुअरों को चराए और जो फलियाँ वगैरह सुअरों को खाने के लिए दिया जाता था उसी में से खुद भी खाए। इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता था। आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई होगी। सचमुच उस पर यह कंगालपन बहुत भारी पड़ी। इसी स्थिति में रहते हुए एक दिन उसको होश आया और उसे अपने पिता के धन संपत्ति की याद आई कि कैसे नौकर चाकर तक पेट भरकर अच्छा भोजन करते थे। तो उसने पिता के यहाँ लौट जाने का मन बनाया और सोचा कि वह पिता से माफ़ी मांगकर कहेगा कि उसको एक नौकर के समान ही रख लें। मन में यह संकल्प कर वह पिता के पास लौट गया। इस उड़ापुत्र के घर लौटने का दृश्य बड़ा अद्भुत है। लिखा है कि जैसे ही वह अपने पिता के घर के निकट पहुंचा, पिता की दृष्टि उस पर पड़ गई और उसने दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया और खूब चूमा। हीन भावना से ग्रस्त बेटा कहने लगा कि वह इस योग्य नहीं है, क्योंकि उसने पिता के विरुद्ध और अपने विरोध में भी पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि उसका बेटा कहलाए। प्रिय मित्र, आम तौर पर ऐसे बेटे को कोई गले नहीं लगाएगा, लेकिन पिता ने अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए सेवकों को आज्ञा दी कि उड़ाव पुत्र को नए जूते नए कपड़े पहनाए जाएं और उसके लौट आने की खुशी में भोज का आयोजन किया जाए। क्योंकि उसका वह बेटा मर गया था लेकिन जिंदा हो गया, और खो गया था लेकिन अब मिल गया है, और सब ने आनंद मनाया। बस यही दृष्टांत बाइबल के आज के अंश में लिखा है। लेकिन वह सत्य क्या था जिसको प्रभु इस दृष्टांत के माध्यम से प्रकट करना चाह रहे थे? सबसे पहले तो यह दृष्टांत मानवता की सच्चाई दर्शाता है। इस पर ध्यान दीजिए कि उड़ाव पुत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में यह मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर से अलग होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रभु यीशु ने कई बार बड़े ही सरल शब्दों में वैसे लोगों का चित्र प्रस्तुत किया है जो लोग परमेश्वर से अलग होने के कारण निराशा और दुख में जीवन व्यतीत करते हैं। उड़ाव पुत्र को देखिए कि वह कहाँ था। यहाँ लिखा है दूर देश को चला गया, अपने पिता का घर छोड़कर दूर देश चला गया। हम कह सकते हैं कि वह खो गया। अब ध्यान दीजिए कि उड़ाव पुत्र ने दूर देश में क्या किया। पद 13 देखिए, लिखा है कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। उस समय उसको लगा कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है, लेकिन जल्द ही उसकी संपत्ति समाप्त हो गई। जब उसके पास धन नहीं रहा तो उसके संगी साथी भी उससे अलग हो गए। इसी समय उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, तब वह संकट में पड़ गया। उसने शायद पहली बार भूख की पीड़ा महसूस की। उसने अनुभव किया कि उसको सहारा देने वाला वहाँ कोई नहीं था। उड़ाव पुत्र, जो धनी मानी व्यक्ति का बेटा था, मजबूरी में उसको सुअर चराने की नौकरी करनी पड़ी। उस काल के हिसाब से यह बहुत ही घृणित काम था। जी हाँ प्रिय मित्र, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पाप का स्वाद कभी न कभी उसको मालूम हो जाता है। इसका परिणाम हमेशा बड़ी दुर्घटना ही होती है। मनुष्य अपने मन में यह सबसे बड़ा झूठ पालता है कि बुराई आकर्षक है और मज़ेदार है, जबकि भलाई उबाऊ और नीरस है। लेकिन पाप व बुराई का जीवन दासत्व की ओर ले जाता है, और जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं उनका अंत घर से और परमेश्वर से दूर कष्ट में उसी प्रकार बीतता है जैसा कि उड़ाव पुत्र का जीवन सुअरों के बाड़े में बीत रहा था। इस दृष्टांत पर ध्यान दीजिए कि उड़ाव पुत्र इस स्थिति में कैसे पहुंचा। वह ऐसा नहीं था कि उसका बचपन गरीब माता पिता के साथ बीता था, और न ही वह अलग हो गए दंपति की संतान था। वह किसी बुरे माहौल का मारा भी नहीं था। इसके लिए वह खुद जिम्मेदार था। वह पिता पर दबाव डालता है। उसके हिसाब से घर बड़ी उबाऊ जगह थी और उसको मौज मस्ती करने का अधिकार था, इसलिए पिता के अधीन रहना उसको अच्छा नहीं लगा। यह वह दृश्य है प्रिय मित्र, जिसका मंचन सृष्टि के प्रारंभिक काल में अदन के बाग में हो चुका था और यह आज भी दोहराया जा रहा है। उड़ाव पुत्र अपनी मूर्खता और स्वार्थीपन के कारण दुख भोग रहा था। हमारे आदि माता पिता की रचना भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए की थी, उनको रहने के लिए एक उचित स्थान दिया गया था, परमेश्वर से उनका निकट संबंध था, परंतु अपनी स्वतंत्रता के नाम पर उन्होंने यह सब छोड़ देने का मन बनाया। उनको लगा था कि वे परमेश्वर से अलग होकर बेहतर जीवन जी सकेंगे। यही कारण है कि आज तक हम जो आदम हव्वा की संतानें हैं, अपने पिता परमेश्वर के घर जाने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि हम वास्तव में दूर देश में ही उत्पन्न हुए हैं। जी हाँ प्रिय मित्र, सुअर के बाड़े में पड़ा उड़ाव पुत्र हमको याद दिलाता है कि हम खो गए हैं। उड़ाव पुत्र का चरित्र हम में से उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु यीशु से दूर रहकर जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लोग खोए हुओं की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने स्वयं को खुश रखने के लिए अनेक प्रकार के ईश्वर बना लिए हैं। वे परमेश्वर से दूर जीवन बिता रहे हैं। यही खोना है, यह अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन मनुष्य के संदर्भ में यही सत्य है। प्रिय मित्र, उड़ाव पुत्र के दृष्टांत का यह पहला भाग है। इसका दूसरा भाग एक अन्य सच्चाई हमारे सामने रखता है, इसके बारे में हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। परमेश्वर आपको अच्छी समझ प्रदान करें। आमीन।
मित्र, यदि आप यह अनुभव करते हैं कि आज के संदेश से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो हमें अवश्य लिखें। हमारा पता नोट कर लें। आशा की किरण, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर मिला लें। आशा की किरण, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें। 0707007338। नंबर फिर से मिला लें। 0707007338। हमारे वेबसाइट का पता है www.gbetministries.org। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सोना का नमस्कार।